जंगल में जो भी चल रहा था, भले ही राजपुरोहित जी उससे पूर्णतया अनजान थे, लेकिन मौसम में पल-पल हो रहे बदलाव को देखकर होने वाले अनिष्ट से वो बेखबर भी नहीं थे। उनके कहे अनुसार राजवीर जी जाह्नवी के साथ पूजा करने के लिए रात के 12 बजे मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हो गए। उन तीनों के अलावा उस वक्त मंदिर के कुछ खास पंडित मौजूद थे। राजवीर जी ने वहां लोगों के होने की मौजूद उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने राजपुरोहित जी से पूछा, राजपुरोहित जी, इतने सारे लोग? डरिए मत श्रीमान, ये सब पूजा को संपन्न कराने के लिए ही आए हैं, राजपुरोहित जी ने उन्हें आश्वस्त किया। पूजा शुरू होने से पहले वहां मौजूद पंडितों के समूह ने मंदिर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया। उसके पश्चात वो लोग पूजा में बैठे ही थे कि आसमां का रंग काला हो गया और बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़कने लगी। मौसम में अचानक हुए बदलाव को देखकर जाह्नवी घबरा गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आकांक्षा ठीक तो होगी ना? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, ये पूजा एक विशेष शस्त्र को जागृत करने की पूजा है। आकांक्षा की जान को खतरा है, हम यज्ञ करके शस्त्र जागृत करेंगे। अगर वो शस्त्र उस तक पहुंच गया और आज वो उस बुराई को खत्म कर देगी तो उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। आज या तो वो बुराई जड़ से खत्म हो जाएगी, ये वो खुद। राजपुरोहित जी कहते ही राजवीर जी ने डरते कांपते हुए कहा, ऐसा तो मत कहिए राजपुरोहित जी, एक आपसे ही तो उम्मीद। उम्मीद तो उस माता रानी से लगाइए श्रीमान, जिस तरह उन्होंने स्वयं बुराई का विनाश किया था, वैसे ही आपकी पोती आज बुराई का नाश करें। चलिए पूजा प्रारंभ करते हैं। हो सकता है हमें रोकने के लिए आज यहाँ पर शैतान के बाशिंदे भी आएं, लेकिन हम में से कोई भी इस प्रांगण से बाहर कदम नहीं रखेगा और ना ही यज्ञ की पवित्र अग्नि के अलावा किसी और चीज़ को देखेगा। मंदिर के बाहर छल की शक्ति चरम पर होगी, लेकिन आज छल को श्रद्धा और भक्ति से हराना है, कहकर राजपुरोहित जी ने पूजा आरंभ की। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, वहां मंदिर के सुरक्षा कवच के बाहर अजीब तरह के जानवरों के रूप में शैतानी शक्तियां आ गईं। लेकिन राजपुरोहित जी इस तरह की स्थिति से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उनके बनाए अभेद्य कवच को तोड़ना इतना आसान नहीं था। हजारों मुसीबतें आने के बावजूद वहां मौजूद एक भी शख्स ने पूजा से पल भर के लिए ध्यान नहीं हटाया। स्टार स्टार स्टार। जंगल के अंदर पिंजरे में कैद चारों पिशाच संजय, विजय, रघु और रवि तड़प रहे थे। पहले ही उन्हें पिंजरे में कैद होने की वजह से तकलीफ हो रही थी, ऊपर से रिवांश ने उस पिंजरे को जमीन में बिगाड़ दिया था, इस वजह से उनका कोई बस नहीं चल पा रहा था। हमें कैसे भी करके इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा, आज के दिन के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई थी, याद है ना आज कौन सा मुहूर्त है, रघु ने तड़पते हुए कहा। हाँ हाँ, सब याद है, और भूल भी कैसे सकते हैं। अभी कुछ समय पश्चात पाताल लोक में चंद्रग्रहण शुरू हो जाएगा, जिसमें चंद्रमा अपने सबसे अशुभ नक्षत्र भरिणी में स्थित होगा, संजय ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। और इस समय में शैतान के सभी गुलाम बराबर शक्तिशाली होते हैं, विजय ने कहा। तभी उन बेवकूफ पिशाचों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा, गुस्से में उसने पैर पटके। लेकिन हमें कुछ भी करके इस अवसर का लाभ उठाना ही होगा, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो फिर कभी ये मौका आसानी से हाथ नहीं आएगा। चलो अब एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और यहाँ इस कैद से बाहर निकलते हैं। रवि के कहने पर तीनों उसके साथ मिलकर वहां से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिवांश अपनी मुक्ति का सोचकर दुखी हो गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी ये मुक्ति की तड़प कभी नहीं मिट पाएगी। जब से आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी सच्चाई देखी थी, तब से उसे उसके दर्द का भी एहसास होने लगा था। वो रिवांश के साथ उसके पीछे पीछे बिना कुछ बोले चल रही थी। अपने दर्द और तकलीफ में रिवांश ये भूल गया कि वो जिस दिशा में बढ़ रहा था वहीं उसने जमीन में पिंजरे में कैद रवि, रघु, संजय और विजय को डाला था। रिवांश बिना किसी डर के दिशाहीन आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे आते हुए आकांक्षा का पैर जैसे ही उस गड्ढे पर पड़ा, वहां एक जोर के झटके के साथ वो चारों पिंजरे सहित बाहर आ गए। धरती फटने से जोर का झटका हुआ और आकांक्षा उछलकर दूर जा गिरी। पिंजरा बाहर आते ही खुल गया और चारों पिशाच उसकी कैद से आजाद थे। आकांक्षा को देखते ही उस पर रघु उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ओ, यहां तो प्यार मोहब्बत चल रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख आकांक्षा ने डर से अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाई, बचाओ रिवांश। उसे आकांक्षा की तरफ बढ़ता देख रिवांश हवा की तेजी से आया और आकांक्षा को अपनी गोद में उठाकर अपने पैरों से रघु को दूर धकेल दिया। उन चारों को बाहर देख वो गुस्से में गुर्राया, तुम चारों फिर से बाहर आ गए, इस बार हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आकांक्षा रिवांश की गोद में थी, गुस्से में उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर आकांक्षा बुरी तरह घबरा गई। उसका विशाल शरीर किसी भयानक जानवर की तरह दिखता था। उसे देख आकांक्षा घबराकर चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे। अरे, आपकी प्रेमिका तो डर गई युवराज, यही है इनका असली रूप, लगता है पहले कभी देखा नहीं आपने, लेकिन अब देख लिया तो बाकियों की तरह तुम्हें भी मार देगा, रवि हंसकर बोला। रिवांश ने आकांक्षा ने छोड़ दिया, ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोट लग गई। उसने गुस्से में रवि को हवा में उठा लिया। पता नहीं क्यों हर बार मुंह की खाने को आ जाते हो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, कहकर उसने रवि को दूर पटक दिया।
ये तुम्हें भी मार देगा, जैसे बचपन में इसने अपनी मंगेतर को मारा था। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। ये तुम्हारी इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। विजय की बात सुनकर आकांक्षा अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में चिल्लाई, हैवान तो तुम चारों हो जो दोस्त बनकर अपने ही दोस्त को छला। इसने अपनी झूठी कहानी बताकर तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया, संजय ने हंसकर कहा। यही मासूम होता तो आज एक पिशाच का जीवन नहीं बिता रहा होता। अच्छा, ऐसा भी क्या किया था इसने जो ये पिशाच बन गया? आकांक्षा बातों ही बातों में उनसे सब जानने की कोशिश कर रही थी। तुम भी जानना चाहते थे ना युवराज, तुमने क्या पाप किया था? याद करो वो दिन जब तुम बचपन में अपनी मंगेतर सुनाना के साथ नदी के किनारे गए थे। रघु रिवांश की पकड़ में होने के बावजूद उसे उकसाने का प्रयास कर रहा था ताकि गुस्से में आकांक्षा की जान ले ले। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने कभी किसी का गलती से भी बुरा नहीं चाहा, रिवांश ने जवाब दिया। बकवास नहीं है ये, सच है सब। तुम्हारा पाप छुपाने के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया था, वरना लोग तुम्हें जिंदा जला देते अगर तुम बिलासपुर में होते। एक खूनी और हत्यारे को बिलासपुर का उत्तराधिकारी कभी नहीं बनने देते। संजय की याद दिलाने पर रिवांश अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। इसी बीच उसने अपना सामान्य रूप धारण कर लिया। आकांक्षा ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो उसकी स्मृतियों के जरिए उसके अतीत में झांक सके। क्रमशः